نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بنيان مرصوص کچھ کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں سورت کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کلیرٹی کے ساتھ قرآن سیکھنے والا بنائے کہ جب کل ہم سکھانے کے درجے پہ آئیں تو لوگوں کو اور ہی نہ پریشان کر دیں. کچھ لوگ سننے سے پہلے کسی کی بات زیادہ کلیئر ہوتے ہیں, سننے کے بعد وہ کہتے ہیں اب اینڈ پہ کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ یہ بھی ہاں یہ بھی ایسے بھی وہ بھی. بھائی آپ یہ تو بتائیے اب ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کیا کریں. تو کنفیوژن کریٹ کرنے والا استاد نہیں بننا, اور کسی بھی پڑھانے والے کے کسی پڑھانے سے دو وجوہات سے کنفیوژن آتی ہے. ایک اس کا علم ناپختہ ہوتا ہے, لکھ لیں یہ فائدہ ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اس کا عمل ناپختہ ہوتا ہے. کتنوں نے اس کو لکھ لیا؟ کسی بھی پڑھانے والے کی دو وجوہات کی وجہ سے بات ان کلیئر رہ جاتی ہے. ایک ہے اس میں اس کا علم ناپختہ, اور دوسرا عمل ناپختہ. علم ناپختہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے, کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, آپ کو شان نزول نہیں پتہ, جو آیتیں پڑھ پڑھا رہے ہیں یہ مکیوں کے متنی ہیں, اور اگر مکی بھی ہیں تو مکی صورتوں کا کون سا دور ہے, سو آن, تو بھی آپ الٹی سیدھی تفسیریں کر کے آئیں گے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے, بلکہ شروع میں میں نے بھی جب بالکل آج سے ابتدائی دور تھا جب اسٹوڈنٹ بھی تھی اور ساتھ ہی ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی آپ بھی کچھ بات کریں, تو میں خود اپنے آپ کو اس وقت کے کانسیپٹس کے ساتھ سوچتی ہوں. میں اس وقت پڑھاتی تھی, کتنا مجھے رحم ہے, غلط نہیں کہتی تھی, لیکن میرے کانسیپٹ کلیئر کوئی نہیں تھے. آف کورس کیسے ہوتے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مکہ پہلے فتح ہو گیا تھا یا سورۃ توبہ میں جو آئے تھے وہ بعد میں ہوئی تھی, کیا ہوا تھا. تو اس وقت کے ساتھ ٹائم لگتا ہے. اور دوسرا کانفلکٹ یا کنفیوژن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب عمل ناپختہ ہوتا ہے, جب لوگ استاد کے علم میں اور عمل میں کچھ اور دیکھیں, اس کا اپنی زندگی گزارنے کا طور طریقہ کچھ اور ہو اور قرآن وہ کچھ اور پڑھائے, تو بھی بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے کانفلکٹ سے بچائے. اور کام رہے گا نا تو نام کوئی نہیں مٹا سکتا. لکھیے ایک جملہ, جو اللہ کا نام بڑا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں نا, ان کے اپنے نام بھی بڑے ہونے لگتے ہیں, باوجود اس بات کے کہ وہ نہیں چاہیں گے. اور اس میں مثال امام بخاری, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, علمی شخصیات کی بات کر رہی ہوں, باقیوں کو تو آپ بعد میں بھی دیکھ لیں. دنیا میں آج جن کے بھی نام ہیں نا وہ کچھ کر گئے, کیونکہ واما ما ینفع الناس فیمکث, وہی بچے گا جو لوگوں کو نفع دے گا. الیگزینڈر کا نام کیوں ہے آج, شیکسپیئر کا اور نیوٹن کا نام کیوں ہے, لا آف گریویٹی. تو دنیا کا کام دین کا ہو, وہ قانونی ہو یا قرآنی ہو, جو کچھ کرے گا وہ بچے گا. اور جو پریزرویشن آف یور ایفرٹس, یہ بھی لکھ لیں جملے, آپ کے کاموں کو جو ٹیم ورک اور اجتماعی کوششوں میں تحفظ ملتا ہے وہ اکیلے کر کے نہیں ملتا. ایم آئی رائٹ اور رانگ, سمجھ آ گیا جملہ؟ اکیلا بندہ آج مرے اس کو تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ اس کی چیزیں کدھر پڑی ہوئی ہیں, کاپی کدھر, قلم کدھر, چلے ہماری زبان میں سونا چاندی کدھر. دنیا میں ہم تو یہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں نا, لیکن جب بندہ کسی ایک پورے سسٹم کا حصہ ہوتا ہے نا, اس کی ایک ایک چیز سیو ہوتی ہے. میں خود کئی دفعہ کئی لفظ بول جاتی ہوں نا پڑھانے کے دوران, ظاہر ہے جو اپنا مقام ہے, تو میرے دماغ میں آتا ہے جب میں نہیں رہوں گی نا تو دیکھے گا یہ جملے کوئی کرے گا, دیکھے گا یہ جملے آگے آئیں گے. میں کئی دفعہ کہہ دیتی ہوں نا ہمارے پاس تھوڑے دن ہے, یعنی منہ سے نکلتی ہیں عام باتیں, کوئی منہ سے تھوڑی کہنی ہوتی ہیں, یعنی کچھ چیزیں پھر بعد میں وہی سامنے آنے لگ, دیکھے یہ اس وقت یہ ہوا تھا, یہ کہا تھا, یہ کبھی میں یہ کہتی ہوں میں نہیں ہوں گی لیکن یہ کام ضرور ہوگا. تو اسی وقت مجھے لگتا ہے کہ ان ساروں نے وہ ساری چیزیں دیکھنا بعد میں جمع کر لینی ہے. تو اگر یہ سارے ہی نہ ہوں, यदि मैं आपको किसी की ना मिसाल दूं, आपको इतनी सी बात दे दूं कि एक अकेला 2-11 जो लोग कहते हैं ना, लिखे जरा आज इसका एक नया वर्जन, एक अकेला 2-11 और 9 इन्फिनिट, 2 के बाद 9 की साउंड बनती है, आप जो मर्जी लिख लें। एक बंदा अकेला कोई काम करेगा ना, वो अकेला ही रहेगा, वो जब फौत हो जाएगा उसको फौत होने से पहले एहसास हो जाएगा कि मैं अब वीक हो रहा हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को जानती हूँ, सारी ज़िंदगी अकेले काम की है, उनको ये लगता था कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते या लोग मेरे साथ नहीं हैं या ये वो, लेकिन असल में ग्लू नहीं थी या मकसद नहीं था या लोगों को आपने दिखाया नहीं कि आप क्या करें। बहुत सारी चीज़ें, हर बात में 10 चीज़ें और बोल दूँ तो और भी आप उलझेंगे। लोगों को अपना विजन दिखाइए, लोग जुड़ेंगे, लोगों को कामयाबी दिखाइए, जुड़ेंगे। अभी 2 दिन पहले मुझे एक सिस्टर ने कहा कि मैं आपको सच बताऊं, आपको पता है कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ या मैं आपके साथ काम क्यों करना चाहती हूँ, आई एम बींग सेल्फिश। मैंने कहा वो कैसे, मुझे पता भी था जवाब। कहती इसलिए कि मुझे ये पता है कि अपने बारे में, कहते हैं आई एम गेटिंग ओल्ड, तो मैंने देखा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती है तो मैं अपना काम प्रिजर्व करना चाहती हूँ आपके साथ, और 20-22 साल से मैं उनको देख रही हूँ काम कर रही हैं, लेकिन शी इज़ स्टिल अलोन। आप अक्सर एक मिसाल देती हैं, टीचिंग इज़ वेरी ग्लैमरस, मैं दे देती हूँ ना मिसाल कि लोग आपका बैग उठाएं ये करें, कहेंगे नो वन इज़ टेकिंग माई बैग, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। तो याद रखिएगा, किसी चीज़ को प्रिजर्व रखना, वो किधर रुलेगी, वो खुलेगी, वो मुंह में जाएगी, वो बकरी के पेट में चारा बन के जाएगी, ये उसका काम है, आप अपना काम कीजिए। इतनी जमा तफरीकों के साथ काम नहीं होते अल्लाह के, तो जब आप बुनियानों मरसूस बनते हैं ना, तो फिर अपना सारा कुछ अल्लाह के हाथ में दे के, अल्लाह मैं ये करने लगी हूँ बाकी आप कर लें, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी खैर है आपके मेरे लिए। चूंकि आज आयतें हमारे पास ज़्यादा हैं, गोल है, तो हम आयत नंबर 6 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बुनियानों मरसूस, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सूरत सफ़ की आयतें 5, यानी आयत 1 से 5 हमने की। आयत नंबर 1 में कायनात के अल्लाह की तस्बीहात करने का बयान था कि अल्लाह ताला ने उनको जो काम दिया वो बैठकर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कौली तस्बीह, वो हाली तस्बीह, वो फेली तस्बीह, या जो काम उनको अल्लाह ने दिया वो तस्बीह थी, और कायनात में कोई भी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता। उसके बाद आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक अल्लाह ने इंसानों को कहा कि तुम जमादात नहीं हो, नबातात नहीं हो, यानी तुम पौधे नहीं हो, तुम पहाड़ नहीं हो, तुम कौन हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू हो, तुम ईमान वाले हो, तो तुम सिर्फ कायनात की तरह बैठकर तस्बीह नहीं पढ़ोगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम 2 लोगों का, अल्लामा इकबाल के बकौल, एक मुल्ला का, इमाम साहब जो मस्जिद में, यानी कह लीजिए कि जो सिर्फ लोगों को वज़ाइफ बताते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं, और दूसरा ये काम जमादात और नबातात का। इंसान का मकसद हयात क्या है कि वो इस दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश करे। तो आयत 2, 3 और 4 और 5, इसमें अल्लाह ने अपनी पसंदीदा शख्सियात और नापसंदीदा लोग बता दिए। नापसंदीदा का जिक्र पहले कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालों तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो, बात तो इधर ही ख़त्म कर दी। हालांकि अगर आप देखें तो आयत 3 इसी का हिस्सा होनी चाहिए थी ना, असल में एक जुमला दे दिया कि आज के बाद आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे ना, तो फिर इसके तकाजे पूरे करने की भी कोशिश करना, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे ना, तो सिर्फ नात पढ़ने और नबी की मोहब्बत के गुण गाने की बजाय साथ ही साथ नबी के मिशन को भी लेकर चलना। और आपका मिशन क्या था, ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लैरिटी के साथ, जिसके इशारे पीछे से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो गोया कि अपने कलमे के तकाजे निभाओ, और कबूरा मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफ़अलून, उसी की कंटिन्यूएशन है कि तुम कलमा तो 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लेते हो, तो तुम इसके तकाज़ों के वक्त क्यों डोल जाते हो? उस वक्त तुम्हें क्या हो जाता है? तो तुम्हारे कॉलो फेल का तजाद अल्लाह को नहीं पसंद। तो आयत 2 से 3 ये है अल्लाह के नापसंदीदा लोग, मबगूस, अल्लाह ताला जिनसे बुग़्ज़ रखते हैं, और मक्त है, गज़ब नहीं है, गुस्सा उस पर आता है जिसको काम करने को दिया जाए और वो ना करे। तो आप कहते हैं ज़रा सा गुस्सा दिखाती हूँ, खुद ही आ जाता है, वो ठीक हो जाएंगे गुस्सा देकर। और बेजारगी किस पे है, जिससे अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई कि इन्होंने कहाँ करना है, छोड़ो बेकार है, वक्त क्यों ज़ाया करूँ। और फिर आयत नंबर 4 में अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने प्यारों की बात की, अल्लाह के प्यारे महबूब लोग, इन अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युकातिलून फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह को बस सीसा पिलाई हुई दीवार वाले लोग पसंद है। कहाँ? नमाजों की सफ़ों में भी सीसा पिलाई दीवार, और मैदाने जंग में भी सीसा पिलाई दीवार, और उम्मत मुस्लिमा बींग अ कम्युनिटी सीसा पिलाई दीवार, रुहमाउ बैनहुम और अशिद्दाउ अलल कुफार की सूरत में, यानी मुसलमान दूसरे मुसलमान की बुराई नहीं सुन सकता, करनी तो दूर की बात है, मुसलमान दूसरे मुसलमान की लेग पुलिंग नहीं कर सकता, कोई उसके बारे में और बात कहनी तो दूर की बात। यानी ये बुनियानों मरसूस सिर्फ ये आपके दीन सीखने सिखाने से नहीं है, जिहाद तो आखिरी है ना, ज़िंदगी के हर फील्ड में मुसलमान ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, पंक्चुअल और डेडिकेटेड, अनथक मेहनत करने वाला। कुरान में अल्लाह कहते हैं मैं थका ही नहीं आसमानों ज़मीन को बनाकर, तो हम अल्लाह के रास्ते में कैसे थक सकते हैं? तो अपने लिए क्राइटेरियन बना लीजिए कि अल्लाह को जुड़े हुए, ठुके हुए, जमे हुए और अपनी जगह पे थमे हुए लोग पसंद है, प्रिडिक्टेबल लोग अल्लाह को पसंद है। जैसे सूरज प्रिडिक्टेबल है, पहले से पता है कि अगले दिन कितने बजे निकलेगा। अल्लाह को वो कहते हैं ना कि लारे लगाने वाले नहीं पसंद, अल्लाह को सिर्फ इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कहते हैं कर लेंगे फिर करते नहीं, वो भूल गए थे। अल्लाह को ये नहीं पसंद कि आज मैं नहीं कर सकता, सूरज एक पैगाम दे दे मैं नहीं आ जा सकता, आज मैं सोना चाहता हूँ, आज मैं कोई और काम करूँगा, और सूरज चांद बनने की कोशिश करे, चांद सूरज की, अपने नसीब पर राज़ी ही नहीं। अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो सिर्फ़ इस एक आयत के ऊपर यकीन करें, अभी भी मेरा दिल तो नहीं भरा, शायद आगे अल्लाह ने फिर कभी कहीं करवानी होगी बात। इसलिए अल्लाह को वो पसंद है जिनमें ये खूबियाँ, और वल्लाह ही हम ऐसे ही थे। नबी ने अपने पीछे जो गिरोह छोड़ा था वो बहुत छोटा सा था, वक्त के साथ वो ग्रो करता गया करता गया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के बाद मुसलमान कहाँ तक पहुँच गए थे? 22 लाख मुरबा मील तक मुसलमान थे। एक शख्स मदीना से उठता था और बगदाद जाता था, और बगदाद से उठता था तो आप कह लीजिए इराक़ और ईरान जाता था, उसको एक शक्ल के, एक हरकत वाले, एक अमल वाले मुसलमान दिखते थे, जैसे इंटे एक जैसी हैं। नमाजों के वक्त पे वो सब छोड़ के नमाजी हो जाते थे, मेहनत करते वक्त वल कासिबु हबीबुल्ला रखते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा गलबा था एक दौर था इस्लाम का कि इवन सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसमें बदवी इलाके भी हैं, अभी इतनी तरक्की भी नहीं हुई, नेट और मीडिया तो ये पिछले 20-25 साल की बातें हैं ना, फ़ोन तो कभी करना, तार आ जाए, किसी का कुछ आ जाए, कहते हैं कि एक ऐसा दौर गुजरा है कि सऊदिया या हजाज के जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, इस्लाम को इतना गालिब देखते थे, जहनों पे इस्लाम, दिलों पे इस्लाम, मरूबियत थी, जैसे आज हमारे दिलों में दूसरों की है। लफ्ज़ इम्पोर्टेड देख लीजिए, इंटरनेशनल देख लीजिए, वेस्टर्न देख लीजिए, यूरोपियन देख लीजिए, ये लफ्ज़ देखिए और उसके ऑपोजिट इस्लामिक। हाँ, इस्लामिक के साथ फोबिया है, फनेटिक्स हो गए, फंडामेंटलिस्टिक हो गए और बुनियाद परस्त हो गए। न जाने हमें आज तो कितनी गालियाँ पड़ती हैं, ये लाख बातें, हमें उर्दू भी नहीं इतनी समझ आती और इंग्लिश भी नहीं आती। लोगों के दिलों दिमागों पे मुसलमान थे, बिलीव मी। तो वो जो लोग थे बदवी इलाकों के, वो अपने के हर तरफ इस्लाम मुसलमान उनको देखते तो कहते थे सॉरी, दुनिया में अब एक भी काफिर नहीं रहा, उनको इतना यकीन था क्योंकि उनको दिखते थे। और 1,000 साल तक हम इस दुनिया के आसमान पे हिदायत का सूरज बन के चमके, मशरक़ से मगरिब तक हम थे, अलजेब्रा हमारे हाथ में था, केमिस्ट्री फिज़िक्स के बानी मुसलमान हैं, अर्शमीदस किसका असूल है, अलजेब्रा कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अपनी हिस्ट्री पढ़िए तो आप ऐसे रोएंगे जैसे बारिश बग़ैर रुकावट के बरसती है। और जब तक हम थे हमने दुनिया का भी काम किया, हमने दीन के भी किए, ये जो सब्बहलिल्लाह ही है ना, इसमें दोनों काम चलते थे। रातों के वो रुहबान थे, दिन के वो फरसान थे, अनथक काम करते थे मुसलमान, ऐशकोश नहीं थे, अभी दुनिया की मोहब्बत का कीड़ा नहीं लगा था, अभी सिर्फ दुनिया का जिहाद नहीं पड़ा था कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बुलंद करना है। आज देखिए मुसलमान उम्मत को, जिहाद तो आज भी हो रहा है, वल्लाह ही हो रहा है, लेकिन किसके लिए? जिहाद फिर दुनिया, दुनिया में पनपने के लिए। हम दुनिया के इस आसमान पे चमकना चाहते हैं वैसे जैसे कोई गैर चमकता है। आज मुसलमान और गैर मुस्लिम की तरजीहात में कोई फ़र्क नहीं रह गया। एक माँ कहती है कि एक बच्चे ने बाहर जाके कॉफ़ी भी पीनी होती है, हैंग अराउंड करना होता है, तो उसको $100 चाहिए, तो फिर उसको तो जॉब करनी पड़ेगी ना, फिर मुझे भी तो जॉब करनी। या आज औरतों को जॉब का क्यों इतना कह लीजिए कि मजबूर कर दिया गया, यानी जुर्म समझती हैं वो औरतें जो घरों में बैठी हुई हैं। वल्लाही वो कहती हैं हम बेकार हैं, नहीं आई एम जस्ट हाउस वाइफ। तो औरत का काम ही हाउस वाइफ था। उसकी नस्लों में अल्लाह ने कितने मर्द पालने हैं, तो वो उन बच्चों को पालेगी तो वो मर्द कल अच्छे कवाम बनेंगे। आज इस नारे से निकालकर औरत को माल कमाने की मशीन बना दिया। बच्चा तो एक मर्द ने नहीं आज तक पैदा किया, औरत ने कितनी कवामियत निभा ली, और सिर्फ इसलिए कि अपडेटेड। हमारी मजबूरियां क्या हैं, हमारी नमाजें क्यों लेट हैं, हम दीन क्यों नहीं सीख पाते, हम कुरान क्लासेस में क्यों नहीं आ पाते, हम कई साल से इरादा करने के बावजूद हज क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों अभी भी उम्रों से पीछे हैं? क्योंकि हमारी दुनिया एलेबोरेटेड है, एक्सटेंडेड फैमिलीज नहीं है, वी हैव एक्सटेंडेड लाइफ। हमारी ख्वाहिशात एक्सटेंडेड है, हमें एक मार्का और एक क्या कहते हैं ब्रांड के नाम का पर्स पकड़ना है, हमें उस ब्रांड की जूती पहननी है। हमारा मसला ये है, रोटियां आज भी सस्ती हैं, पानी आज भी सस्ता है। हमारे नॉर्वे से आकर जब मैं इधर एक दिन इनके साथ ग्रोसरी के लिए गई, मुझे लगा मुफ्त चीज़ें बट रही हैं आपके पास, बिलीव मी। तभी मैंने कहा इतना खाना क्यों आता है, लेकिन ये मुझे पता ये 10 गुना भी महंगा होगा तो इतना ही आना है। हमारा देसी कल्चर है। तो याद रखिए, मैं बात लंबी ना ही करूँ तो बेहतर है, लेकिन फिर भी बात मुझसे निकल जाती, मैं करूँ क्या। आप देखिए कि पहले दौर के 1000 साल, नबी सल्लम के दौर से लेकर 1000 साल तक मुसलमानों ने इस्लाम को बनाने में सारी एफ्टे लगा दी, इस्लाम उभर गया। आज हम एफर्ट्स हम अपने आप को बनाने में लगा रहे हैं। पहले दौर के मुसलमानों ने इस्लाम की बिल्डिंग बनाई बुनियादों मरसूस बन के, आज हम खुद अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं। हम अभी खुद ही अपडेटेड नहीं, कुछ अरसे के बाद तो हमारा लैपटॉप भी कहता है अब अपग्रेड चाहिए जी, अब फ़ोन अपग्रेडेड चाहिए, मामा मैं ये 8 नहीं यूज़ कर सकता। ये थोड़ी कि पुराना ख़राब होता है, अगला आ जाता है, मुसीबत चाहिए हमारी। जब अगली चीज़ इतनी बड़ी स्क्रीन पे आपके लाउंज में दिख रही है तो ये किसको अच्छा लगेगा छोटा सा, उसने कहना ये इसको अल्लाह करे को मुफ्त ले ले, फ्री में लेते हैं दो, कहते ले जाओ जान छोड़े क्योंकि अगला लेना है। इसने आज हमें इतना परेशान किया कि हम मोतियों की तरह बिखर गए। 400 साल से ज़ायद हो गए इस उम्मत को सोए हुए, और अभी तक इसकी आँख ही नहीं खुल रही, नींद ही नहीं खत्म हो रही, हम सोए हुए हैं। हम सोचते अल्लाह और उसका रसूल करेगा काम, और या फिर हैं मुल्क में और शहर में चंद लोग वो करेंगे। सही कहा था मौलाना खाली ने कि बस्ती का हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिर कर ना उभरना देखे, माने ना कभी के मद है हर जजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। कहते हमेशा हर ऊंची लहर आती फिर नीचे भी आती है, पर वो कहते मुसलमान तो ऊपर हुए थे अब नीचे ही रह गए, अब कोई नहीं कह सकता कि कभी हम उभरेंगे। तो जब उम्मतों की तरजीहात इंडिविजुअलिज्म पे आ जाए, और ये भी लिख लीजिए कि आज दिन ब दिन ये ज़्यादा हो रहा है, यानी आज के दौर में ये जो आयत कल हमने पढ़ ली थी और अब अगली आयत पढ़ने वाले हैं, आज के दौर में प्रॉब्लम क्या है हम सब लोगों का, उम्मत का एक आम तौर पे, कि हम मीडियोकर्स हैं, आला ईमान वाले और कह लीजिए कि हाई गोल्स रखने वाले है ही नहीं है। ईमान का लेवल एक ख़ास जगह से ऊपर नहीं आ रहा। आपने देखा है कि टैंकियाँ बहुत ऊंची बनाई जाती हैं ना शहर में, कि जितना भी ऊंचा ले जाना चाहिए, शर्त यह कि वो टैंकी उतनी ऊंची हो, ये पानी का असूल है ना। अगर टैंकी इधर है तो किसी ने 15 मंजिला कोई बिल्डिंग बना ली तो ऊपर पानी नहीं जाएगा, शोर से होकर ऐसे जाएगा। टैंकियाँ ऊंची बनाई जाती हैं, इसी तरह पानी ऊपर चढ़ता है। हमारी जिंदगियों का गोल उतना ही रहेगा हमारा जो गोल होगा। दुनिया गोल है तो बस इसके लिए ही कोशिश होगी, और अगर गोल आखिरत होगी तो याद रखिए जो आखिरत के लिए कोशिश करते ना उनकी ज़िंदगी में कमी नहीं आती और बढ़ता है, लेकिन उनको परवाह नहीं होती। जिन चीज़ों के लिए लोग भागे दौड़े फिरते हैं ना, वो चीज़ें उस बंदे के पीछे दौड़ती हैं। और वो हदीस नबी की जो आपने कई दफ़ा सुनी होगी कि जो दुनिया के पीछे जाता है तो दुनिया उससे आगे जाती है, और जो इसको छोड़ देता है तो दुनिया जलील होकर उसके पाँव में पड़ती है। कभी कोई मुझसे पूछे आके, कितनी मोहब्बतें, कितने अरमान, कितनी तमन्नाएं, सिर्फ इस एक हदीस पे मुझे समझ आने लग जाती है कि जितना आप दिल से इन चीज़ों को निकालेंगे उतना अल्लाह ताला आपको और आजमाइश में डालता है। तो लिहाजा आज अगर हम इस जगह बैठ के ये बातें कर और करा रहे हैं ना, तो हमें कुछ नियतें करनी है। आज मरेंगे, कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा होगा, 2 या 3 पीछे रोने वाले छोड़ेंगे, 2 4 दिन के बाद ही उनको सुकून आ जाएगा, सब्र आ जाएगा। आज इतना गम नहीं होता मरने का किसी के, एक चोट तो पड़ती है उसके बाद बंदा बहल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्र से खुशबू आए, आपकी कब्र खुदे तो उसमें से मिट्टी में से खुशबू आए, और आप के साथ एक अजीब सी कैफियत हो, तो उसके लिए आपको युकातिलूना फी सबील ही सफ़ा करना पड़ेगा। इस्लाम का मिजाज ही ये है। और आप हिस्ट्री खोल कर देख लें, आपको ये बातें समझ आएंगी। तो वह रब्बक फकब्बिर करने वालों के नाम को ला नीचे नहीं गिरने देता। आपको तारीख में इतनी मिसालें इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। आयत 5 में हमने देखा बिगड़ी हुई कौम, तो ये बनी इसराइल का इब्तदाई दौर था। इसके साथ ब्रैकेट में अभी भी लिख लीजिए कि ये शुरू का दौर था जब सिर्फ दिल सख्त हुए थे, अभी बिगाड़ नहीं आया था। अब अगली आयत जो आज हम पढ़ने लगे, ये उसका अगला दौर है कि जब लोग किसी चीज़ के ऊपर रुकते नहीं हैं, तो दिन ब दिन फिर उनके साथ और क्या मामला होता है और कैसा मामला होता है। तो आइए ज़रा इसका तर्जमा दोहरा लेते हैं। इसका टॉपिक लिखिए, आयत नंबर 6 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। तो टॉपिक लिखिए, दिल की कजी के असरात जो बाद में ज़ाहिर हुए। और स्लैश लगाकर एक और भी कर लीजिए, हज़रत ईसा बतौरे मुसद्दिक और मुबशिर, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनको तस्दीक देने वाला और मुबशिर बनाकर अल्लाह ने कैसे भेजा। मेरे साथ दोहराइएगा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वइस काला, और जब कहा ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्ने मरियम ने, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, इन्नी बेशक मैं रसूलू रसूल हूँ, अल्लाही अल्लाह का। ये का लफ्ज़ किधर है भला? ही में, शाबाश, अल्लाह का इजाफत है ये। यानी सिर्फ आपको फील कराना चाह रही थी कि लफ्ज़ की ज़बर ज़ेर भी कितनी अहम होती है। इलैकुम, तुम्हारी तरफ, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा इसकी जो बैन यदैया मुझसे पहले है, मिनत तौराती तौरात में से, व मुबशिरम और खुशखबरी देने वाला हूँ, भी रसूलिन एक रसूल की, याती जो आएगा, मिम्बादी मेरे बाद, इस्मुहु नाम उसका अहमद अहमद होगा, फलम्मा फिर जब, जाअहुम वो आया उनके पास, बिल्बैनाती वाज़ह दलाइल के साथ, कालू उन्होंने कहा, हाजा ये सिहरुन जादू है, मुबीन खुल्लम खुल्ला। चलिए अब इसके बामुहावरा तर्जमे को सुनिएगा, और इसके बीच में जहाँ मैं रुकूँ वहाँ बंद लिख लें, यानी एक आयत में कितने टॉपिक हैं या कितने जुमले बनते हैं आप देखेंगे। मैं हल्का सा रुकूँगी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ एक कॉमा लगा लें या नंबर लिख लें। वइस काल ईसा इब्न मरियम, या बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ से अब उनकी सिफात है, मुसद्दिकल लिमा बैन यदैय मिनत तौराती, पहली सिफत, और जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात, इसकी तस्दीक करता हूँ। पहला काम था ये हज़रत ईसा का। दूसरा, वह मुबशिरम बि रसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, इनकी बिशारत सुनाता हूँ। यहाँ तक उन्होंने अपना तारुफ करा दिया, लेकिन रियल में हुआ क्या? फलम्मा जाहुम बिल बैयिनाति कालू हाजा सेहरुम मुबीन, फिर जब इन लोगों के पास खुली निशानियाँ लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरीख जादू है। चलिए नोट करिए ज़रा, इस आयत का मेन लुब्बे लुबाब क्या है? पिछली आयत से पता चला कि बनी इसराइल हज़रत मूसा के दौर में जब थे तो उनके दिल सख्त हो गए। अब यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के आने तक दिलों में बिगाड़ भी आ गया। जैसे फ्रोज़न मीट को बाहर रखें और भूल जाएं तो कुछ अरसे के बाद वो ख़राब हो जाता है। जब दिलों को बिगाड़ का शिकार होने दिया जाए तो फिर उसमें से स्मेल आती है। तो मूसा के दौर में बनी इसराइल की ये जरूरत नहीं थी कि रसूल को कत्ल कर दें, लेकिन दिल सख्त हो चुके थे। वो अटकलबाजियाँ और वो सब कुछ जो सूरह बकरा में हम पढ़ चुके, ये कर दो और वो कर दो, मुतालबात थे, सवालात थे, ये था वो था। लेकिन हज़रत ईसा जो कि बनी इसराइल ही के आखिरी दौर में थे, ये तो आप सभी को पता है ना कि हज़रत मूसा बनी इसराइल का इब्तदाई दौर है, हज़रत ईसा आखिरी नबी थे जिस पे बनी इसराइल का दौर ख़त्म हुआ था। तो बिगाड़ जब बढ़ता गया, हत्ता कि हज़रत ईसा का दौर आ गया, तो उस वक़्त क्या हुआ कि दिल की कजी का वो असर जो बाद में दिखा वो क्या था कि उसमें इतना बिगाड़ आ गया कि एक नबी को कत्ल करना भी उनके लिए कोई बड़ी बात ना रही। और यहाँ तक रिवायत आती है कि नबियों को कत्ल करते और जाकर फिर उसके बाद अपनी मसंदों पे बैठकर दीन सिखाने लगते, और मजहबी तबके में बिगाड़ आया था। यहाँ उसी का तذکرہ है कि जब कौम तालीमात से मुंह फेर लेती है, पिछली आयत में हज़रत मूसा का जुमला था लिमा तू जूननी, तो मुझे क्यों तकलीफ़ देते हो, ईज़ा रसानी क्या थी कि अमल नहीं करते। किसी भी नबी के लिए या किसी उस्ताद के लिए, किसी मुरब्बी के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है कि लोग उसकी बात ना माने। तो जब कौम ने मूसा की बात ना मानी तो दिल ऐसे ऐसे सख्त हो गए। जैसे आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो आप देखते हैं ना कि दिन ब दिन फिर वो ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बात से गुज़रता है और फिर वो चीज़ें उसके लिए ख़तरे का सबब बनती है। तो यहाँ असल में हम मुसलमानों को जो आज इस कुरान को पढ़ और पढ़ा रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि तुम अपने दिलों को टेढ़ा ना करना। फलम्मा ज़ागु ज़ागल्लाहु, जब उन्होंने अपने दिल टेढ़े किए तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। जो सांचा उन्होंने अपने लिए मांगा, अल्लाह ने एग्जैक्टली उन्हीं के साथ वही सलूक किया, और अल्लाह का मामला बंदे के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। फलम्मा ज़ागु अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, कि आप जब घर को गंदा होने देते हैं तो अल्लाह फिर और गंदा होने देता है, आप चीज़ों को साफ़ रखते हैं तो अल्लाह आपको फिर उसकी और तौफीक देता है, और बंदे के लिए वो काम आसान कर दिया जाता है जिसके लिए वो पैदा किया जाता है। तो अगर आज हम उम्मत मुस्लिमा नबी सल्लम का नाम लेने वाली उम्मत टेढ़े हैं, दिल सख्त हैं, अजानें होती और हमारी गर्दनें नहीं झुकती, रमज़ान होते और हम रोज़े नहीं रखते, हम सही सोच और सही फैसले से महरूम हो गए हैं, तो दिन ब दिन उम्मत मुस्लिमा में भी बिगाड़ बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने मूसा की नाफरमानी करके उनका दिल दुखाया, और अपने दौर के जवाल के अख्ताम पर कह लीजिए कि जो बिल्कुल अपना उनका दौर जवाल था, उधर हज़रत ईसा को अपने मुँह से कहते हैं कि हमने कत्ल कर दिया। अभी साहित में हज़रत ईसा के तीन इरशादात हैं, ज़रा उस पर भी इशारा ले लीजिए, फिर लफ्ज़ी वज़ाहत पर चलेंगे। पहली बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत के मनसब पे फ़ाइज़ किया गया, यानी अल्लाह ने उनको नबी बना दिया, तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही? अपना तारुफ, इन्नी रसूलुल्लाह, इसको हाईलाइट कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट टाइटल, दैट इज़ द बेस्ट इंट्रोडक्शन एनी वन कैन हैव, अपने नाम के साथ कुछ और जोड़ना, कोई साब के कोई लाह के, नबियों का ये काम नहीं था। और दूसरी बात देखिए, ईसा क्या कह रहे हैं, इन्नी रसूलुल्लाह, ये तो नहीं कह दिया कि इन्नी इब्नुल्लाह, नोट करें, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, और ये भी नहीं कहा कि इन्नी अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। यहूद के दिलों के टेढ़ा होने का नतीजा था कि जिसकी सज़ा अल्लाह की तरफ से इनको मुसलसल नाफरमानियों की सूरत में मिलती रही, हत्ता कि इनके दिल टेढ़े हो गए, मोहर लग गई और हिदायत की तलब ख़त्म हो गई। एक और फ़र्क नोट कीजिएगा, अगर आपका जहन इतनी तेज़ चलता है, तो पिछली आयत में हज़रत मूसा का जिक्र था, व इस क़ाल मूसा ली कौमी ही, याद है हज़रत मूसा ने पुकारा तो क्या कहा, या कौमी। हज़रत ईसा ये नहीं कह रहे, वाह फ़र्क समझ रहे हैं, सवाल समझ आया कि नहीं। हज़रत ईसा ने या कौमी क्यों नहीं कहा, या बनी इसराइल क्यों कहा? तो देखिए, अब आप देखिए कि मुफस्सरीन और जिन्होंने दीन को सीखा और समझा और मेहनतें की, उनकी काविशें और हमारा दीन को समझना कितना फ़र्क है। कौम का लफ्ज़ जो होता है ना, ये ख़ानदान से जुड़ता है, बाप से नस्ल चलती है। हज़रत ईसा के बाप के ना होने की दलील है ये, चूँकि उनका बाप नहीं था और बाप से नसब चलता है, तो या कौमी की बजाय या बनी इसराइल कह दिया, बस इतनी बात आपके लिए काफ़ी है। ये बारीकियाँ समझ आती हैं जल्दी में? नहीं आती, इसके लिए वक्त देना पड़ता है और दुआएं मांगनी पड़ती हैं कि अल्लाह हमें फोकस कर दे और हम इन सारी चीज़ों पे चलें। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इससे पता चलता है कि अम्बिया कराम ख़ुद को हमेशा अल्लाह के कासिद कहते थे। अच्छा, अब बुनियान व मरसूस से इसको लीजिए, जोड़िए, इसके ऊपर एक जुमला लिख लीजिए कि तारुफ बन जाइए, इंडिविजुअलिज्म से हटकर इज्तमाईयत में ले जाने वाली चीज़ ये जुमला भी है, इन्नी रसूलुल्लाह। आप आयत के ऊपर नज़र जमाइए, अगर ईसा अलैहिस्सलाम सेल्फ प्रोजेक्टेड माइंडेड होते, सेल्फ प्रोजेक्शन होती, मेरा नाम रहे, आखिर मैं कौन, तो क्या कहते, वाइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी ईसा, या इन्नी ईसा इब्न मरियम। आपको ईसा का नाम दिख रहा, नहीं दिख रहा, किसका दिख रहा, रसूल, दैट इज़ द बुनियान व मरसूस। हम जब अकेले किसी भी जगह कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारा नाम सबसे अहम हो जाता है, तो हमारा तारुफ नाम बन जाता है। तो दुनिया में इफ़त नाम की कितनी ख़वातीन है, अगर आप मेरे इस नाम को ही तारुफ बनाते और ये लफ्ज़ नूरुल कुरान एक इंस्टीट्यूट और एक लोगों की सूरत में आपके पास ना होता, तो क्या होता, मेरा नाम, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फ्लायर पे सबसे बड़ा मेरा ही नाम होता, तो क्या मिलता आपको उससे, मेरा नाम इफ़त नहीं रिफ़त होता, सुरैया होता, फ़ातिमा होता, खतीजा होता, क्या मेरे इस नाम से कोई फ़र्क पड़ता है? और क्या मैं कुछ सनद हूँ दुनिया में आपको पढ़ाने वाली कि मेरा नाम देख कर ही आप आ जाए मुझसे पढ़ने? दैट इज़ द पॉइंट हेयर। बुनियान व मरसूस बनने के लिए अपने नाम बस काटने पड़ते हैं, काम वही होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, रसूलुल्लाह मुझे फ़लाँ ने भेजा। सहाबा कराम जब भी किसी मिशन पे गए, सारी ज़िंदगी सहाबा ने जिहाद किया, किए ना, तबलीग की ना, तो सीरत मेरा यकीन है कि आपने पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही तब होते हैं जब सीरत समझ आती है। सारे काम सहाबा ने किए, नाम है उनका, कामयाबी मिली, नाम काम सब कुछ थे, लेकिन सब वो करते थे जो उनको कहा जाता था करने को। आज हमारे यहाँ जिहाद का लफ्ज़ बदनाम पता क्यों है, चंद लोग उठते हैं जाके गोलियां मार आते हैं और कहते हैं ये फलां जिहाद है, दैट इज़ नॉट द जिहाद। अकेला बंदा जिहाद नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ये हुकूमतों का काम है, ये इमामत का काम है। अल्लाह आज मुसलमानों को एक लीडर दे दे, वो कह देगा सब निकल जाओ, छोड़ कर तो निकल पड़े। हाँ, जो काम आप और मैं कर सकते हैं वो इस इल्म के जिहाद को करने का और जहालत को दूर करने का। तो बस एक इशारा था इसमें जो आपको समझ आ गया कि रसूलुल्लाह कहा, उन्होंने अपना नाम नहीं रखा। और हमेशा ये दुआ किया करें कि हमारा कोई तारुफ बन जाए। आप किसी भी जगह जाते हैं तो आपको मोमेंट देखें, एक प्रोफेशनल तरीका है ना, बाहर बेल बजी, आपने डोर खोला, तो वो आपको एक विजिटिंग कार्ड देगा, आई एम फ्रॉम जेट्रॉनिक्स, आई एम फ्रॉम ईबे, नाम देते हैं ना, आपको नाम से पता चलता है ना कि ये बंदा बात करने के काबिल है भी कि नहीं। आप बाहर जाए और कोई कहता है आई एम डेविड एंड आई एम मार्क, तो आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा डेविड। तो बड़ी मेहनत से साख बनती है, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनको कोई खपा दे, लोग खपाते भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। बार दफ़ा नाम इतने प्यारे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं आप हमारे स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते पूरे, आपको हम नहीं रख सकते, तो खुशकिस्मत है वो बंदा जो किसी नाम के साथ खप जाए। आगे देखिए करते क्या हैं, पहली बात आपको समझ आ गई कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला हम सबको बहुत कुछ सोचने की दावत दे रहा है।